sekarang dilakukan sudah selalu kuat ada gaya. Orang suka cakap berarti ada bantu dengan orang tua orang dia ini mana orang punya orang lewat yang suka selingkuh orang yang kita orang
और
और अगर सामने इसे की अहमियत हमारे रहें कि बहुत बड़ा आइडिया है तो फिर आदमी सब कुछ कुर्बान कर देगा इसे ही मजिए जैसे हमारे गुरुओं ने सब कुछ कुर्बान कर हुकूमत को बुला बड़े बड़े औरतों को ठुकरा दिया माल की बड़ी बड़ी पेशकश बड़ी बड़ी तनख्वाहों को छोड़ दिया ऐसे आप इतनी में मशहूर उनके काम आया जवान कर ड्राइविंग पढ़ाने के लिए बैठे चंद रुपयों की तनख्वाह नहीं 7-8 रुपये कुछ और उधर अलीगढ़ से 400 रुपये और उधर हैदराबाद तलाब की तरफ से 1000 रुपये की तनख्वाह में बंगला और गाड़ी में सवाल में और काम बहुत थोड़ा करते हैं रिसर्च का जो सेंटर था उनका खुदा होता है तो मारिफ हैदराबाद उसमें उनको जगह मिल जाएगी तो उसको उन्होंने माजरती खत भी किया है उसको भाई मैं तो यहाँ पर अलीगढ़ में भी शॉपी आरबी के वास्ते टेंशन वाली बात है जो टेंशन सरकारी नौकरियाँ और मदरसे में तो आगे लटकता ही सारे में नजर आता है लटक की तलवा राय में नजर आता है ऐसा तो वहाँ वो यहाँ ये लेकिन उन लोगों के सामने दिल में खिदमत हम खाना चाहता कर सकते हैं शेयर के उस वक्त तक आगरा से जरूर देखे उनके खानदान के जो बड़े उस वक्त के लोग थे लोगों ने उनको पता चला भाई शेयर के जिम्मे कर्जा बहुत था इधर मौना या रियासत का मामला था जो भी आता उसकी जरूरत पूरी करते थे चाहे अपने पास ना हो तो कर्ज लेकर उसको दे देते और वो कर्जा अपने जिम्मे रखते उसके जिम्मे उस जमाने में तो 4-5 हज़ार का कर्जा था जब सोना होगा 25-30 रुपये हो गया और ज़्यादा 50 रुपये होगा उस वक्त इनका कर्जा कितना अरे शेयर ने उनके जनाजे पर ऐलान किया तो मैं पाकिस्तान के जितना कर्जा है उसका जिम्मेदार है उनको कर्जे से बरी करना और जो कर्जा है अभी मेरे पास लेकर लेना चाहे तो मैं कर्ज करके उनका कर्जा वापस करता हूँ और जो लोग अभी लेना ना चाहे तो मैं धीरे धीरे उनका पैसा एक तरफ हालत ये थी दूसरी तरफ पेशकश जैसी आ गई तो उनके जो खानदान के जो बुजुर्ग थे उसका नाम का उन्होंने भी तस्करा नहीं किया उन्होंने उनको कहा कि अभी से बड़ा तो तुम बना बैठा है कबूल कर लें तो बड़ी पेशकश आ रही है तेरा कर्जा है कर्जी से जारी थे इतना सारा लोन थे शेयर की बच्चियाँ ही थी और बहन थी और पुराने भाई लोग थे ना उनसे करके थे अंदर की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी और उन्होंने जाए ऐसा पहले बना वही उन्होंने सुनने जो हुआ लेकिन जब आप मेरी एक बार आए मैं अपनी उम्र में उस वक्त मस्जिद देखा रहा तो उस वक्त तो भी अलग था और अभी हिंदुस्तान के सदन की तनख्वाह 25,000 रुपये और बंदे का खाना खर्चा 1,00,000 रुपये जितने मेहमान रोजाना आते थे रमजान के मेहमान रमजान के जितने मेहमान रोजाना मेहमान होते हैं सफर जितने होते थे रशियत का मामूल ये था कि अपना और अपने साथ जो कालू भी होते थे उनका खर्च खुद दे दो वही ले जाते थे ये सारा करते इसलिए माना है कि ऐसा बंदूकदार की किस्में का निकाल तो उनकी बहन को पार्टी की जिम्मेदार जो आदमी अल्लाह के दीन के लिए खालिस हो जाता है तो फिर वो भी उसके इस बरकत से बहुत से खा गए फिर मिसाल दी है उन्होंने रशियत भी रंग मदनी रहमत रंग मदनी का भी यही याद था रोजाना के मेहमान उसका था रोजाना एक पत्र मुझको पेशेंट पर जवाब गया था महीने के लिए तो घर से कर्जा की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कंप्यूटर पर चैलेंज किए पोस्ट टाइम के साथ जाते थे तो उनकी तरफ जाते और इधर की वो कौन सा इधर इस्तेमाल करते थे तो खास किस्म का इधर इस्तेमाल करते थे तो पूरी शीशी उधेर दी हाथ में और फिर लगाया जा रहा था तो हमारे वो भी कंचू में पड़ गया बहुत महंगा ही करता था और तो रोजाना एक शीशे लगाते थे रोजाना एक शीशे वो तो नवा बात नहीं था उसको पता था कि इतना महंगा है उसने क्या कर दिया बोले जिसके लिए लगाता हूँ मैं उसको वो दे देता है जिसके लिए लगाता हूँ तो रोजाना एक शीशे दे देता है तो वो साथ से चला गया और स्पेशली हो गया सबक इस सबक के बाद याद रखेगा उसको साथ में और क्या कहा कि एक साथ की शीशियाँ मेरी तरफ पर मजीद मान अली मेरे साथ नहीं देखा, एक वाक्य तो हमने देखा मान अली साहब, लेकिन ये अलग हिस्सा है। मान अली साहब ने लिखा है कि शेर जंगल में शिकार करता है, वो तो थोड़ा सा खाता है, लेकिन उसकी बरकत से बाकी बहुत से जानवरों को रोजी मिलती है, तो वो बचता है शिकार। अहले इलम कहाँ लिखी है और किसी की सनद बराबर की और सनद पर सिक्का नहीं माना जाता कि वो है जिसका यह हाल होगा। मदरसे वालों के सनद पर सिक्का मान के तो हमारा नंबर नहीं लगा उसमें, मदरसे वाले क्या कहते हैं कि क्या है उसमें ये जो काम कर रहे हैं वो नंबर करेगा। ये तो आसमानी फैसले होते हैं, आसमानी फैसले। मेरे बाद में अपने इल्म को अहमियत देकर, क्योंकि ये अल्लाह का इल्म है, इसको अहमियत दी है तो अल्लाह के साथ को अहमियत दी, सिफत इलाही। और अगर इसकी तासीब निकली है और इसकी अहमियत खत्म हुई तो सिफत इलाही है। अगर इसकी अहमियत हमारे कुलूब में बढ़ी है तो सिफत इलाही है, अल्लाह के साथ की तासीब इल्म की तासीब। और अगर इस इल्म की अहमियत निकली है कम हुई है तो अल्लाह के साथ की अहमियत खत्म हुई, सिफत इलाही। ज़ाहिरी जो मानती असबाब हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई कई दिन पापों में गुजरते थे और मशहूर किस्से, ये नहीं जिंदगी में कहा ऐसा हो गया, मशहूर किस्से हैं आपके आपके पापों में, आपके पापों के मशहूर किस्से वो दो दिन तीन तीन दिन पापा हो गए, पापे हो गए आपकी बेटी के और पापा के, ऐसे कितने किस आपकी जिसम में अठहर पर एक चादर, एक मौका ऐसा था कि आपके जिसम पर एक ही चादर थी, एक औरत ने एक जोड़ा पेश किया आपको दो चादर अच्छा कीमती जोड़ा था, आपने वो सेवन तक किया श्री फरमा के सहाबा के दरमियान में किया कि बदो आ जाए और बैठा थोड़ी देर बैठ करके यार रसूल अल्लाह आपका ये जोड़ा मुझे दे, वो जो अंदर तशरीफ ले गए दोबारा वही एक चादर लपेट कर आए और वो जोड़ा, जब आप अंदर तशरीफ दे रहे हैं तो सारा वहाँ बैठे बहुत सारा समझते कि आपके तौर पर इसकी सब्जी आदमी ने आपको बहुत सवाल कर लिया और आपका मामूल था सरस्तर ने कहा है कि अगर तशहुद में ला ना होता तो जिंदगी में कभी उस जबान से ला। आपने जाकर चेक करके अंदर गए तो देहाती से कहा भाई बुजुर्ग के पास एक ही जोड़ा है और तुम लोग मांग लिया क्या करेगा, तो कहने लगा जब मर जाऊँगा तो कबर बनाऊंगा, लेकिन वो लोगों को बता देते। तो ये असल हमारी विरासत तो यही है और ऐसा नहीं था कि आपके पास आया नहीं इस्तेमाल ही नहीं, आपके पास बहुत दुनिया आई बहुत दुनिया, उसमें तो उसके भी किस्से मशहूर वो पदक के आगे उन्होंने पढ़ के भेजे सर और उनके मैं पढ़ा जब पूरी बात वगैरह हुई जो आपकी दीगर बहुत सारे वाकया थे जिसने आपके पास माल दिया, लेकिन आपने पसंद नहीं किया कि माल और आपको जो है एक जगह चले और अपने लिए भी दुआ यही कि कन्यानी बीमार सकता है मुबारक लिए भी अपने अहल और अपने आयाल के लिए दुआ की इस बार मोहम्मद होगा अल्लाह मुझे इस बार मोहम्मद और उम्र से कहा माँ अक्षर आया को दुर्फक मेरे दुआ की तो वही थी तनाव दे दे बस जो तुमने मुकदर में लिखी है उस पर तनाव दे और अहलो आयात के लिए दुआ कर रहा है तो क्या कह रहा है अल्लाह हमें जान इस काल है मोहम्मद आपके वक़्त रहकर फाकूद कहते हैं गुजारा हो जाए सवाल न करना पड़े किसी से और उम्र को कह रहे हैं माँ अक्षर आलय तुम फ़क्र कि मुझे तुम्हारी फकीरे का खौफ नहीं कि तुम फकीर हो जाओ बोला कि अक्षर आलय को लेकिन मुझे जो तुम पर खौफ है पर दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं जैसे अगली उम्मतों पर फुतूहात हुई और उन फुतूहात में वो हलाक हो गए इसी तरह उनकी हलाक हो। तो जिस जगह पर जो उस चीज की बार बार वार्निंग दी हो तो जिस चीज की बार बार वार्निंग दी कि भाई ये खतरा है डेंजर 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 तो सबसे ज्यादा यही आ रहा है जहाँ जमा हुई दुनिया और फसाद ऐसा हो जहाँ उसके नक्शे बड़े हैं जितनी हुकूमतें मुसलमानों की सवाल पजीर हुई हैं वो कपड़ों फाका में नहीं अभी वो ऊपर रमन भैया अब्बास से लेकर अबू अब्बास से लेकर उस्मानी खिलाफत कर मुगलों की सरकार कपड़ों फाका में जवाब नहीं आया। कपड़ों फाका में तो उर्ज आया, कागड़ आया था हिंदुस्तान में, कुछ नहीं था उसके पास, आया था कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इसी तरह दुनिया भर में जो उरूज है सहाबा का जो उरूज है वो कब्र फाफा में उसका नहीं है, सामने की ताकतों से लड़ने का पूरा सामान नहीं होता, पूरे अस्बाब नहीं होते। बदर में क्या है, वो इब्तिदा है, शुरुआत वहां से हुई, और फिर उसके बाद में तकरीबन जो माने के हुए हैं बड़े बड़े क्या 3,000 3,00,000 10,000 है माता को। तो उरूज और जवाल जो हमारा है, उरूज कब्र फाफा में और ईमान और अमल की कुव्वत के साथ आया, और जवाल जो आया है वो सारा ऐशो इशरत में, मालो दौलत में, सोने चांदी स्पेन स्पेन के जो जवाल तो वो बड़े उपर में आया है, उनके बादशाहों के उस वक्त के जो बादशाहों के किस्से हैं उन्होंने जो अपने हरम और अपने महल जो बनाए थे सोना चांदी और सोने चांदी की और उनकी जो असला है बोले तुर्की अगर किसी वक्त में भी दिवालिया हो जाए पूरा मन तो खाली वो काफे के म्यूजियम से सिर्फ उनके औरतों का सोना निकालेंगे पूरे मुल्क का कर्जा अदा हो जाए। उसको ज्यादा हमारे पास जो नियामत दौलत है वो उरूज की नियामत है, दुनिया का भी आखिर है, और सिर्फ हमारा उरूज नहीं है इसके पीछे, पूरी उम्मत का उरूज है इसमें, पूरी उम्मत अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बड़ी सल्तनत है पिछले अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला था हुजूर अलैहिस्सलाम। पहले तो यहाँ मुल्की ने भी यहूदियों से उलझ मिलने के मुश्किल से हुआ, वो जो मालिक वहाँ के हुए उसको सब खत्म हो गया, और फिर जब मुकाबला आया तो बड़ी ताकतों से आया, फिर माली अतबार से और तहजीब तमद्दुन के अतबार से और हथियार और फौजों के अतबार से बड़ी तहजीब याफ्ता कौमों की शुमार होती थी। तो उनके भी मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जैसे असबाब इकट्ठे नहीं किए, उनके जैसे असबाब इकट्ठे उनके वही जो उनके दस्तूर के असबाब थे छोटे छोटे से जो अरब और जजीरा अरब के जो असबाब होते थे उनके तलवार घोड़ा खच्चर गधे वगैरह वो तो हाथियों वाले हैं तो मतलब और भी दूसरी चीज़ें और उनके असबाब और ऊपर के थे। तो उनके मुकाबले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो असबाब इकट्ठे नहीं किए, उनके मुकाबले के लिए अफराद इकट्ठे किए, और अफराद भी तादाद में नहीं हमेशा कलील तादाद में, अददन बददन दोनों तरह से, लेकिन जो जुमले होते थे खाली देने वाले थे कि मैं तुम्हारे पास ऐसे ऐसे लोग लेकर आया हूँ जिनको मौत ऐसे भी रूप में जैसे तुम आजम में और शराब में हमारे पास, ये नहीं कहा हमारे पास तुमसे ज्यादा ऊपर की तलवार है, तुम्हारी 6 फीट की हमारी 8 फीट की, तुम्हारा घोड़ा ईरानी है तुम्हारा अरबी, और तुम्हारे पास बल्कि वो तो एक दो मरतबा जरा सी नजर गई पर्दा मियां ने चपत लगाई, जरा सी नजर हुई उस मौके पर जब उनकी तादाद कम थी, देखिए बोले तो उसमें तो जरा सी नजर उधर गए अल्लाह ताला की तरफ से, तो पूरी इस्लामी तारीख जो कि उरूज के दिन है वो ईमान और यकीन और अमल के साथ जब तक मुसलमान है तो उरूज भी उरूज है। अभी भी हमारे मौजूदा हालात हो रहे हैं दुनिया भर में, पूरा आलम अरबी और सारे हालात पेश हो वहाँ तो पूरा हो चुका तकरीबन, बड़े बड़े शहर पिछले 10 सालों में जो तबाही हुई है पीछे हलाकों और उनके किस्से अभी तक दोहरा रहे हैं, अभी ये ताज़ा जब किस्से हलक पूरा हो चुका है, तमाम पूरा हो चुका है, शाम इराक बिल्कुल खत्म हो चुका और यमन तबाही के दहाने पर खड़ा। तो वो लोग पुराने किस्से थे तातारियों, उनसे ज्यादा खतरनाक किस्से थे। लेकिन ऐसा थोड़ा जो फख्र फाखामी के ऊपर गलत है, इराक पर गलत है तो फख्र फाखा में थे, शाम वाले फख्र में थे, सूरज खाना नहीं था, केवल रसवा रहे सब कुछ। ये जो हालात हैं वो हालात अल्लाह से दूरी के, वह मुझे करना हूँ अदना दूर अदा परिणाम जरूर और हालात मौजूद के लिए हमारे जो मौजूदा हालात पेश आ रहे हैं मुल्क में, तो वो मौजूद के लिए मुसलमान मौजूद है तो बात अल्लाह की तरफ मुतवज्जह अल्लाह की। और अगर ईमान के साथ किसी की मौत ईमान की हिफाजत के खातिर होती है तो ये तो उसके लिए इज्जत की चीज़ है, इज्जत की चीज है। पूरी इस्लामी तारीख उबेर बिन आदी से शुरुआत हुई है मक्के में, बदर के बाद जब बदर के जो लोग उनके मरे थे उनके उनके दोनों के इंतकाम में उन्होंने उबेर बिन आदी को जो शहीद किया था मक्के में, उबेर बिन आदी को ले गए मक्का वालों को आगे और फिर उनको एक जगह मक्के से बाहर ले जाकर उनको लड़काया और फिर कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे बोले थे जो भी तशद्दुद उसको कहेंगे कि वो भी तशद्दुद और क्या था, पूरे बोले ने देखा उन पर तो कहां बैठ गए तो दो रकात नमाज पढ़े और दो रकात नमाज पढ़े और मुख्तसर पढ़े और कहा कि लंबी इसलिए नहीं पढ़े तुम लोग कहोगे तो मौत के खौफ से नमाज नहीं पढ़ा, मौत के खौफ से अपना तुम लोग करना पड़े। लेकिन मेरी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा चुभे ये भी मुझे पसंद है, ईमानी पावर अंदर है। उन्होंने जो बुलवाया बोला मैं अपनी बात रखी अपनी बात वो उसकी इब्तिदा वहां से हुई है कि सोहेब रूमी का जो किस्सा है कि वही हुजूरी तशद्दुद था उनके पीछे चढ़ गए किले पर और कहते देखो मैं तुमने सबसे ज्यादा तीर अंदाज उस दिल नहीं होता मुसलमान चाहे सामने हजार रुपये को होता हूँ मैं तुमसे सबसे ज्यादा तीर अंदाज दिल्ली अभी मेरे पास है जब तक चलेंगे तुम्हारा मुकाबला करूँगा और जब पूरा होगा तो ये मेरी छोटा है उससे तुम्हारा फिर तुमसे जो हो कर लेना फिर तुमसे जो हो कर लेकिन बात सुनो मक्के में मेरे पास इतना माल दो दिया है तुम ले लो और मुझे छोड़ो तो ये सौदा करके गए पूरा सब कुछ देकर आए सिर्फ ईमान के साथ जान बचा के लाया। जब पहुंचे मदीना मुनव्वरा उससे पहले जो भी राज थे उमिनन्ना सुनी सुनी मस्तूम के वाह वाह बिल्ला हुजूर अल इस्लाम ने जैसे ही देखा दरवाजे में दाखिल कर रबी हल गई हो या अबाया या बड़ी नफे की तिजारत करके आया है सब कुछ देकर आया लेकिन ईमान बचा कर लाए थे और हुजूर ने फरमाया कि बड़ी नफे की तिजारत करके आए हो या नहीं। मैं तो उजाफा का किस्सा है नसरानी बादशाह कह रहे हैं अभी हुकूमत दे दूंगा और अपनी बेटी से तेरा निकाह कर दूसरा ये कबूल कर नहीं होगा फिर और प्रेशर लाए ये होकर सारा नहीं होगा फिर आखिर में वो तैयार करवाया तेल उनके लिए उस पर डाल दिया लेकर जाने लगे तो रोने लगे तो बुलाया वापस घबरा गया हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई तुम सारा कबूल कर अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह करते आगे हुकूमत दे रहे इसका काम नहीं हो रहा हूँ नहीं जान रहा इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक जान है अगर मेरे जिस्म के बालों के बराबर मेरे पास जान होगी तो मैं अल्लाह के नाम पर जान बचाने के वास्ते नहीं जान खपाने के लिए रो रहा हूँ कि एक ही है मेरे पास ये है ईमानी हालात और पूरी तारीफ पूरी तारीख में जो है मुसलमान जब तक ऐसी कंडीशन में था किसी ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद कि जहां मुसलमानों की जानें गई हैं वही तो इस्लाम जिंदा होगा वही इस्लाम। लेकिन बस इतना है कि मुसलमान अपनी जगह अपने ईमान अमल पर पक्का बने ये नहीं कि न तसीरत दुनिया वाला आ कि न दुनिया आज में आवे न दीन आवे कि उस अल्लाह से नजर अटती है دین سے کامیابی کا یقین ختم ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین باقی نہیں رہتا تو وہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت. یہاں بھی مار کھانی پڑتی ہے وہاں بھی مار کھانا بن جاتا ہے. پوری تاریخ میں یہ کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اپنے دین و ایمان سے زندگیاں ہٹی اور اللہ سے نظر ہٹی تو پھر وہی بات بھی ترک کو وہ شرک کو ان کے شریفوں کے حوالے کر دیا. یہ ان سے خوشامد کرتے رہے, ان کی خوشامد کرتے رہے, ان کی خوشامد کرتے رہے اور ایسوں پر بھروسہ کرتے رہے جن پر بھروسہ نہ کیا جائے کبھی نہیں. اب یہی تو ہے, ابھی کس طرح بھروسہ کرتے کہ بھائی نہیں یہاں صاحب بھروسہ آ رہا ہے, یہ آفیسر اس میں تاثر نہیں ہے. الکفر الکفر مل رہا بھروسہ ہے اللہ پر, بھروسہ ہے اللہ پر. تدبیر اپنی جگہ ہے, تدبیر اپنی جگہ ہے, ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھنا تدبیر. لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کے مذاکرے ہوں اور اسی کے میسیج پھر بنے ہوں اور بھائی ہمارا قوم ہے, حکومت ان کی ہے اور گورنمنٹ ان کی ہے, فوج ان کی ہے, پولیس ان کی ہے اور کلیکٹر ان کا ہے, ڈی ایس پی ان کا ہے اور پی آئی بھی محلے کا انہیں کا ہے اور ہوم گارڈ بھی ان کے ہیں. ہمارا ایک نمبر سے ہمارا بدلا ہے جیسے اللہ میاں کوئی فریکچر ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا کسی میدان میں نعوذ باللہ پڑا ہو جو ہماری مدد ہی نہیں کر سکے گا. حضور علیہ السلام نے جو ایک مالکے کے موقع پر کہا تھا جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اپنی طاقت اپنے ہتھیار اپنی وہ سب میں پیش کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے تو حضور نے صاحب خاموشی سے سنتے رہو بولنے لگے. جب ان سب میں بولا لَلَا غُصَّى وَلَا غُصَّى لَكُمْ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہو ان کو اللہ مولانا ولا مولا, اللہ ہمارا مولا, اللہ ہمارا مولا. ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا حسبی اللہ, حسبی اللہ اکیلے اور ہجوم تشدد کے ہاتھ میں ہو بھی سارے تھے ان کو لے کر ڈالنے کی فکر میں آ گیا اور کہہ رہے حسبی اللہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے اور پورا کولا ان کے اوپر لگا ہوا حسبی اللہ. اور باسے پھنسے رہے ہیں جب فرشتہ اس وقت آیا ان کے پاس جو پانی کی اس پر نمود تھا بادلوں پر اور اس نے پیشکش کی کہ میں بادل برسا دوں پانی کو بجھا دوں. اس وقت انہوں نے کہا اما الیک فلا, مجھے تیری حاجت نہیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی. حضور علیہ السلام نے وہی کہا تھا وہ جو بھی تشدد تھا وہاں پورا ٹولا آیا تھا حضور کو وہاں یہ کلاس میں بارس دور میں پیچھے پڑے ہوئے تھے لوگ اور یہ دو ہی تھے اور جان کا خیال وہ جان کے در پہ تھے سر پہلے ہو کر کے گھبراہٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ تم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ. جب جب بھی ایمان والوں نے اللہ پر اعتماد کیا ہے اکیلے ہیں سامنے پوری حکومت, اکیلے ہیں سامنے لاکھوں میں اللہ کی مدد آئی جس وقت جیسی مدد کی ضرورت. ابراہیم علیہ السلام کے موقع پر سیدھے آپ کو حکم کرنے کی ضرورت تھی اللہ نے سیدھے آپ کو حکم دے دیا پوری پر بند سلام. جیسی مدد کی ضرورت پیش آئی اللہ نے اس وقت جیسی مدد پائی. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نہتے کمزور پیچھے پورا ٹولا فرعون کا اسلام کی مدد کی ضرورت کسی اور راستے سے تو ان کی وہ مدد کا راستہ کھولا. اللہ کی مدد کے مختلف راستے ہمارے ذمے ہیں, ہم لوگوں کے ذمے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اجتماعی مجلسوں میں اللہ کی مدد اور نصرت کو کھولیں جمعہ کے بیانات میں اور گھر گھر جا کر اس کو بولنا, گھر گھر جا کر بولنا, مردوں کو عورتوں کو تاجروں کو مارکیٹ میں جا کر سنانا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک حکومت نہیں اللہ ہے اور ملازموں کو سنانا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے. مسلمان ملازم ہی کو گھبرا اپنی ملازمت میں ایماندار بن کے رہے ہو اگر وہ ایماندار ہے اللہ اس کے ساتھ اور اگر ایماندار نہیں ہے تو پھر وہی بات ہے عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری اولاد نیک ہے تو وہ کوئی عبد اللہ صالحین اور اگر نیک نہیں ہے تو پھر مجھے ان کی پرواہ نہیں. اگر ملازم مسلمان ملازم اکیلا ہے 50-100 کے بیچ میں ایماندار ہے یہ 100 اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا, 100 کے بال بھی کا نہیں کر سکتا. इसकी एक ही आवाज से 200 हिल जाएगी, अगर वो पक्का है, ईमानदार अपनी जगह से है, और अगर ईमानदार नहीं है तो फिर 100 है एक का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जिम्मे है इस खुसूसन ऐसे हालात में कि हम घर घर ये जो 2.5 घंटे की मेहनत 2.5 घंटे की, उससे यही तो चाहा जा रहा है कि जो चीज़ें हमारी बुनियादी जरूरत है, ईमानियात और अफाई व इबादत, अल्लाह से होता है, अल्लाह करता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है। कामयाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, खिलाफी सुन्नत तरीकों में नाकामी है। और आखिरत का मसला, असल मसला है कब्र, हशर, हशर और जन्नत और जहन्नम, इसको इतना बोला जावे, इतना बोला जावे लोगों के दरमियान में, ये सारा डर खौफ खत्म हो जाए। ये मसला ही नहीं इसका तो किसी चीज़ का, मौत तो एक मतलब आनी आनी है। हमारे असल मसाइल तो वो है, जिन असल मसाइल से अभी तवज्जो हटकर जुज़वी मसाइल में हमारी तवज्जो उलझी हुई, जुज़वी चीज़ है सारा। अगर असल मसले में लगे हैं हम तो फिर अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है, अल्लाह की कुदरत हमारे साथ है। जितने रस्बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हैं वो सारे रस्बों में यही है। और मजीद अल्लाह ने, मजीद अल्लाह ने क़यामत तक आने वालों के लिए जो ऐलान किया है, इन्ना लनसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु बिल्हयात, कि सिर्फ वो मदद है, वो नुसरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ पास नहीं थी। वल्लज़ीना आमनु बिल्हयात दुनिया कहकर अल्लाह कह रहा है कि क़यामत तक अल्लाह की नुसरत है, मदद है ईमान वालों के साथ। और क़यामत के दिन भी अल्लाह की मदद, जो मदद है साथ अल्लाह की, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, दीन के मददगार बनने को कहा ईमान वालों, तो दीन के मददगार बने अल्लाह मदद करेगा। कैसे करेगा? अपनी कुदरत से करेगा। अगर हमारी भी जबान पर अल्लाह कैसे करेगा तो फिर थोड़ा सोचने का मौका नहीं, कैसे करेगा अपनी कुदरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सीधे आँख को हुक्म कर दो, वैसे ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम को पानी का रास्ता बनाने की जरूरत है, वैसे ठीक। जिसकी जिस मौके की जो मदद की जरूरत थी अल्लाह ने वो मदद दी। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बना के दे दी, क्या उनकी मदद वैसे। इस वक्त जो नुसरत और मदद का सबब हो, अल्लाह ताला कादिर है कि वो अपनी कुदरत से मदद करेगा। लेकिन हमारे जिम्मे कि हम अब उसके हुक्म पर बाकी हैं। अगर ईमान वाला हुक्म पर बाकी है तो फिर उसका कोई बाल लीला नहीं कर सकता। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से इबादत से, इबादत के कबील से हो, या मामला मुआशरत के कबील से हो, या अगर जिम्मेदारी कर रहे हैं आदमी को इंसाफ के कबील से, जिस लाइन से जो हुक्म अल्लाह का है उस हुक्म पर अगर मुसलमान हैं तो फिर उसका कोई बाल लीला नहीं कर सकता। और पूरी तारीख में ऐसे हिस्से पर रोजाना भी रोजाना अल्लाह ने किसी जगह कहा वही लिखी अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना ना को निशान हमारा। अगर तौहीद की अमानत है तो फिर इस अमानत की वजह से हिफाजत है। तौहीद की अमानत अगर अंदर है तो ये अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की, खाली जिस्म की हिफाजत की जिम्मेदारी। ईमान के साथ हिफाजत, ईमान के साथ जहन्नम में नहीं चलेगा, ईमान के साथ जहन्नम में नहीं चलेगा। ईमान के साथ हिफाजत का वादा है, ईमान के साथ सरबुलंदी का वादा है। अंतुल आलम इन कुन्तुम मुमिनीन, जितने वादे अल्लाह ताला के दुनिया आखिरत के हैं वो ईमान के साथ। और ईमान कलमे के बाद उसी चीज का तो नाम है कि जो कलमा हमने पढ़ा उस कलमे से जिस अल्लाह का नाम लिया है, सल्लाह पर भरोसा, सल्लाह पर एतमाद, सल्लाह पर तवक्कुल। और उस वक्त एतमाद और भरोसा के जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं, बदर में कुछ नहीं था, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ जाने वालों को चेक किया बदर में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार ने जो वादा किया था वो मदीने में रहकर साथ देने का और इबादत करने का वादा किया, जो उनका मीना में जो वादा हुआ था कि मदीने में आपका साथ देंगे और अपने बीवी बच्चों की तरह आपकी हिफाजत करें। और बदर में चूंकि मदीने से बाहर जाना पड़ा था, तादाद थोड़ी सी थी, लड़ाई के इरादे से निकले नहीं थे, दो चार तलवारें दो घोड़े थे सिर्फ, अजीज सामान नहीं था। और मसला यह पेश आ गया था यानी जंगसर पर आ गए, जंगसर बीन देकर भागते हैं, वापस जाते हैं, اور یہ نبی کی شان کے خلاف جنگ سر پر آ چکی ہے. تو حضور علیہ السلام نے چیک کیا بار بار کیا بھائی کیا کروں کیا کروں, وہ انسان کے سردار کرے تھے جو حضور نے بہت اس کو دور ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں, بہت سمجھدار تھے انسان, حضور کی منشا کو بہت سمجھنے والے. تو کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہم انصاریوں سے کہہ رہے ہیں ہم بنی اسرائیل جیسا نہیں کریں گے. بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا نا نہیں تھا بنتا اور رقم کا فقور دلا اتنا نام ہونا کا علم علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لو ہم تو یہاں بیٹھے ہم نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ, ہم بنی اسرائیل جیسا نہیں کریں گے. یا رسول اللہ آپ ہم کو برقِ دماغ تک لے جاؤ گے نا, یمن کی خطرناک پہاڑیاں ہیں برقِ دماغ, تو ہم آپ کا وہاں تک ساتھ نہیں, ہم پیچھے نہیں کریں. اب دیکھا انہوں نے کوئی ظاہر ان کی تیاری تو پوری ہے لیکن ظاہر حالات جیسے کہ کمزور ہیں نکلتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ مدینہ چھو اور وہاں سے تیاری کر کے لاؤ یا کسی کو کہلوایا کہ وہاں سے کوئی ہتھیار لاؤ سامان لاؤ, بلکہ اب یہ ہے کہ ہمارے آدمی پکے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکڑ لیا, خیمے میں گئے اور پوری رات اللہ کے سامنے دھوئے دھوئے گڑ گڑائے اور اللہ کی مدد کر رہا. سیدھے اس وقت کی ضرورت تھی کہ فرشتے میدان میں آ جائیں تو وہ مدد فرشتے میدان میں آئے, اللہ چاہتا تیز ہوا چلا جاتا, اللہ چاہتا سب کو ایسے لیا جاتا سب سامنے والے وہی مر جاتے سب. اللہ کی مدد کیسے تو ایسے قدرت ہے اس کی قادر ہے وہ اللہ, فرشتوں کی ضرورت پر فرشتوں کو اتار دیا. حالانکہ فرشتوں میں یہ چیز ہے نہیں وہ لڑائی کر رہے لیکن اللہ نے ان کو وہ استعداد دے کر اتارا, اور وہ کہہ رہے تھے نا وہ حضرت عباس ان کو کتنے مسلوب تھے ان کو پکڑا تھا, وہ تو چپستہ کرتے چھوٹے سے تھے اور وہ بڑے لمبے تڑنگے تھے گھوڑے پر بیٹھتے تھے ان کے پیر زمین پر گھسٹتے تھے, بولے اتنے بڑے آدمی کو ایک چھوٹا یعنی پستہ قد آدمی کیسے پکڑ کے لائے. وہ کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے نہیں پکڑا ہے کسی اور نے پکڑا کسی اور نے پکڑا. یہ اللہ کی مدد ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو بلایا عوام میں بھی خواص میں اور محلوں میں گھر گھر جا کر. یہ جو ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے اس میں صرف تشکیل نہیں ہے, تشکیل تو چھٹا نمبر ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہمارے کام میں چھ نمبر ہے اور تشکیل چھٹا نمبر ہے, اس سے پہلے پانچ نمبر ہے. گھر گھر جا کر ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسی باتیں کریں تو لوگ نہیں سنیں گے, ارے سنیں گے نہ سنیں گے. اللہ کی پڑھائی اللہ کی عظمت کے طریقوں میں کامیابی نماز سے زندگی کا بننا اخلاق کی باتیں اکرام کی باتیں اخلاص کی باتیں یہ ساری باتوں کے بعد پھر آخر میں اس بھائی کو بھائی دیکھو یہ چیزیں ساری ہماری ضرورت کی, اور جتنا اس کو بولیں گے سنیں گے ایسے ماحول میں جائیں گے تو ہمارا ایمان بنے گا, عمل میں ترقی آئے گی, اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, حضور کی محبت دل میں آئے گی, آپ کے طریقوں پر چلنا آسان ہوگا. اس کے لیے بزرگوں نے ایک نصاب بنایا ہے بھائی اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چار مہینے جانا نہیں کچھ زیادہ ہے, اسی سے پوچھیں گے کہ نہیں بھائی زیادہ تو نہیں تو پھر آپ مت کرو, تو کہے گا کہ نہیں میرا ایسا ہے اس کو تو نہیں دیں گے اس حساب میں کا قصہ سنائیں گے انبیاء کے واقعات سنائیں گے کیا بہت اچھا ہے میں تیار ہوں لیکن ابھی نہیں کہہ سکتا ایک مہینے کا کوئی بات نہیں تم مہینے بعد چاہیے وہ کہنے دو مہینے کا ارے دو مہینے بعد چاہیے لیکن تم نیت تو کر لو کے بعد چلے نیت تو کر لو اور پھر اس کو بیٹھ ٹھیک اللہ کے نیت کو مبارک کرے قبول فرماوے اللہ کی جان مال خوب برکت دے. اب اسی بھائی کو دیکھو آپ جاؤ گے مہینے کے بعد چار مہینے لیکن اس سے پہلے یہاں رہ کر مقام پر کچھ اعمال اس سے ہماری حفاظت ہوگی اور اس برے ماحول کے مقابلے میں ہمیں ایک اچھا ماحول ملے جس میں نماز کی پابندی ہوگی ذکر تلاوت کی پابندی ہمارے دل میں نوکری کرے گھر والوں سے اچھا سلوک ہمارا رہے گا اللہ رسول سے تعلق باقی رہے گا امان کی پابندی ہوگی تو روزی میں برکت ہوگی گھر میں برکت ہوگی ساری چیزوں میں اللہ برکت کرے گا. اس کے لیے مقام پر رہ کر روزانہ چند منٹ کا شروع ہوتا ہے فلاں نماز کے بعد 20-25 منٹ حاضر ہوگی فلاں دن ہمارا کشت ہوتا ہے فلاں دن دوسرا کشت کرتے ہیں تو فلاں محلے میں جا کر کیا کرتے ہیں تھوڑا بتائیں گے بھائی دوسرے کشت میں کیا کرنا ہوگا. اور پھر ہمارے یہاں تین تین دن کی جماعتیں جاتی رہتی ہیں یہ تین دن کے بعد دو دن کے بعد ایک تین دن کی جماعت میں جا کر ایسا کرو شروع ہوتا ہے بسم اللہ بول کے تین دن چھوڑ तीन दिन में इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, और आपकी दुआ भी करना, अल्लाह से ऐसा नहीं मांगना, अल्लाह ऐसा कर दे, ऐसा करके उसको मकामी काम पर आवा कर। लेकिन पहले हमारी बात जो है, बात उमूमन अभी यह है कि हमारे जो इंफिरादी मुलाकातें हैं उन मुलाकातों में तश्कील वाली हो, हमारे जाते भी उसी वक्त उस भाई के पास जब उसकी तश्कील करनी हो। तश्कील तो वैसे करनी करनी है, रोजाना करनी है, लेकिन हमारी बात में गालिब बात तश्कीली बात है। और चूंकि तश्कील को आसान खेल है, सीधे तश्कील करना ऐसा है जैसे किसी का उसको शीशे सुंघाए बगैर पेड़ चीर दिया, उसको शीशे सुंघाई नहीं वो कितना कूदेगा, उसको तो बेहोश किया नहीं। अब तरकीब मुजाकरा सुना दी उसने, और भाई साहब रहमतुल्लाह के बारे में कुरान सुना था, भाई साहब के पास प्यार नहीं आता था उससे थोड़ी बात कर, फिर उसकी तश्कील वो तैयार हो, फिर वो उसको तैयारी करने घर जाते, तो भाई साहब को आदमी साथ में घर में जाओ, घर जाएगा तो इसका प्रोटोकॉल उतरेगा, अभी तो सारी तरबीब उसने सुनी इसलिए तैयार हुआ, प्रोटोकॉल सुना दे तो बेहोश होता है, मतलब घर जाएगा तो उतर जाएगा, फिर वो बोले तो तुम साथ में रहो इसके दुआ भी करो, और इसको फिर बाद में जरूरत पड़ेगी इसको करने की तो फिर सुनाना पड़ेगा। तो तरबीब जो है आखिरत की तरबीब, आखिरत का इस्तेहसार उससे आदमी में नरमी आती है, इसलिए जरूरी बात के तबके है बुरी बात ईमानिया और बुरी बात। अगर हमेशा हमेशा जंगल जानना एक आदमी शौकीन है, एक लोग हम लोग गए हो पाते तो वहाँ ये खाने पहले नहीं गया बम्बई खान लोग नहीं हो, उनका रिश्तेदार था उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखी थी, तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा हमारे एक आदमी है वो भी पहले वहीं था आवास की मुलाकात हो उसके पास करके, तो हम उसके घर गए नीचे स्कूल की चौथी पाँच मंजिल पर मकान था, और हम गए उसके वहाँ उसने हमको ऐसा सजा रखा था वो पौधे जैसा गार्डन बना रखा उसके वो ड्राइंग रूम, तो मुझे ऐसा था कि इस आदमी को ऐसी चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी, तो मैंने ईमान यकीन की बात में दुआ सलाम कर करके जन्नत का घर दिया, वो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, और कह रहा ऐसी बात हो तो कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। अब अल्लाह ने जब जन्नत का तस्करा किया तो हम लोग करने में क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना तफसील से जन्नत को खोला, उसकी औरत के एक उस वक्त को बयान किया है, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी कलाइयां कैसी होगी, उसकी उंगलियां कैसी होगी, उसके पिंडलियां कैसे होंगी, पिंडलियों की हड्डी का गुदा कैसा होगा, उसके पिस्तान कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसे होंगी, उसकी आवाज कैसी होगी, वो शेर क्या पढ़ेगी, अपने शोहर से मोहब्बत कैसी करेगी, सारी चीजों को बयान किया है कुरान में, जिसका इजमाल है तफसील हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान, जहन्नम का तज़किरा किया, उसके तबक़ात बताया, नीचे कौन होगा, छठे में कौन, पांचवे में कौन, पहले में कौन, अव्वल महले में कौन जाएगा, सबसे आखिर में कौन निकाला जाएगा जहन्नम, उसके आज़ाब की किस्में नकल की, कैसे सांप, कैसे बिच्छू, कैसा पीप, कैसा लहू, कैसी चीखें उनकी, सारी चीज़ों को बोला, ज़रूरत है इन चीज़ों को तफसील से बोला जाए। और ये जानते उलमा हैं, अवाम को क्या जानते हैं, कुरान हदीस में पढ़ा हमने, जिन्होंने कुरान हदीस पढ़ा है उन लोगों ने इसको पढ़ा है, तो इसको ज़रूरत इस बात की है, इसलिए अभी ये हो गया कि जब ये तफसीली मुजाकरे तीन बातों के मुहिबा आखरत के ख़त्म हो गए, और मिजाज लोगों का ये होगा कि कम से कम वक्त में कोई अच्छा बयान कर दो, बस कम से कम वक्त में बयान, और वो भी अच्छा से अच्छा, तो उसको सुना जाएगा, बाकी कोई अगर आदमी दीन की और कोई बात कर रहा है तो उसको सुनने का मिजाज, और आवाम का नहीं, आवाम का नहीं, हमारा एक शॉर्ट क्लिप लाओ 3.5 मिनट की, बस दिल बहला है अल्लाह के कुरान, अल्लाह ने खराब कुरान और हदीस है, लाखों हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलिस से अमूमी खुतबात आपके लंबे नहीं, लेकिन आपकी जो मजलिस है जैसे रोजाना मामूल की फजरबाद की मजलिस सूरज चढ़े तक बाज़ मरतबा लगती थी, फजरबाद से हुजूर चार साहब बैठ जाते थे, साहब आपके फिर बैठते थे मस्जिद में, और उसमें बातें होती थी मुख्तलिफ किस्म की दीन की बातें, मसले मसाइल जो होते, और घंटों भर मजलिस होती थी, ऐसे बुजुर्गों के यहाँ मुस्तकिल जो मशाइख के वहाबी असर से मगरिब तक और दीगर उनके अवकात में घंटों भर मजलिसें हैं, आदमी 5 मिनट की क्लिप से नहीं बनता, ठीक है वक्ती तौर पर एक असर उसका इनकार नहीं है,
लेकिन आदमी के अंदर जो बात बनती है, आदमी जो पुख्ता होता है, वो घंटों भर दीन की बातें सुनते बोलते सुनते बोलते अंदर पुख्ता की आती है। ये तालीम के हल्के मौना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक किसी एक नमाज के बाद डेढ़ घंटा तालीम कहते थे, डेढ़ घंटा तालीम, और हिदायत में कहते थे मैं घंटों भर तालीम के हल्कों में बैठकर ईमान व अमल के फजाइल को सुनूं। 13 साल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत है, जिस मजमे पर सबसे ज्यादा कुर्बानी इस मजमे ने दी, मक्के में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो सबसे ज्यादा कुर्बानी वाला मजमा, और वली में से साबिकीन और वली, उनको उस वक्त न नमाज थी न रोजा था। हुजूर अलैहिस्सलाम अरकम इब्न अरकम के मकान पर ठहरते थे मक्के में, और वहाँ आपकी मजलिस से जो लगती थी उसमें ईमानियात और मगीबात के तस्करे थे, अल्लाह की बड़ाई अजमत, अल्लाह की तरफ सिफात, और आखिर कब्र हशर हशर जन्नत जाना। पहले ही दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया था वो जन्नत। आले यासिर के वहाँ से हुजूर गुजरते उनको बहुत हालात में पाते, पूरा खानदान मुबतला हुआ। आले यासिर जब गुजरते वहाँ से कहते अहलन सबरन या आले यासिर, सबरन या आले यासिर, इन्नमा उलदकुमुल जन्नत। अरे ऐसे सबर करना, हमारा तुम्हारा वादा जन्नत का। अंसार से बैठ हुई, सारी बातें हुई, हजरत अब्बास ने आकर उनको मुतवज्जे किया, भाई देखो तुम हुजूर को ले जाने की बात करते हो, मदीना में हाथी मार रहे हो, संभाल सकोगे तुम? ये मेरा भतीजा है, पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाए, मदीने की सेठ बजाने के लोग, तुम ये कह रहे हो इनको ले जाओगे हिफाजत करोगे, कर पाओगे तुम? तो उनमें से एक आदमी ने फिर हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह क्या ये सही कह रहे हैं? ऐसे कई वाकयात मिले जिसमें हुजूर ऐसा बात, एक भाई जन्नत कौन है जो दरख्त को खरीदे जन्नत में, एक दरख्त को उसको दे, कौन मेरे मेहमान को खाना खिला दे मैं जन्नत में उसके लिए खाना, यतीम का कफील और मैं जन्नत में जो इस तरह हूँ, कितनी हदीसें मिलेगी जिसमें जन्नत का वादा है। सब दुनियावी बरकतों के वादे में कर दिए, वादा जन्नत का किया, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि उसके वादे पर खड़ा हुआ आदमी जो है ना जान देने तक पीछे नहीं हटेगा, खुशबू और अपने का जन्नत की खुशबू और के पार, क्योंकि वो जन्नत आखिरी हदब है। अगर उसके बीच का हमने कोई वादा किया है और वो वादा पूरा नहीं हुआ, बात नहीं हटेगा। इसीलिए हमारे हजरात बुजुर्गों ने जो तश्कील में कहते हैं कि भाई तश्कील में उनको कारगुजारियाँ ना सुना, तुम जाओगे तो जमा गई थी बात में गया, उसका धंधा बढ़ गया, और उसके कोई नहीं थी तो कुछ तब्दीली मिल गई, तो मिल गया, तो ये ना सुना, अल्लाह के वादों पर उसको खड़ा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के वादे पर खड़ा किया है, और ये साफ साफ बात, साफ साफ बात है भाई, एक आदमी अपने बच्चे की डॉक्टर बन जाने की उम्मीद पर 12 साल जान मान लगा था उसके पीछे, 12 साल 15 साल तक अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए एक आदमी 15 साल तक उसके पीछे अपनी जिंदगी लगा देता है। उसके सामने वो है, हमारे सामने तो आखिरत के बातों के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, दुनिया की बरकतें अपने आप जाहिर होगी, जिसके जिसके मुकद्दर में होगी तो जाहिर होगी। सहाबा में से तबका है जिनके सामने दुनिया की बरकतें जाहिर हुई, अब वगैरह कह रहे हैं जमाना था कि मस्जिद में बेहोश पड़ा रहता था, आज इतने टीम के कपड़े से नाक साफ कर रहा, और मुसलिम ने उमर फिर साल में इस्लाम कबूल किया और हालात आए उसके हाल में इंतकाल भी हो गया कि मौत के वक्त कफन का कपड़ा नहीं था, ऐसे भी सहाबा है। तो दुनियावी हालात का ठीक ठाक होना वो आदमी की मुकद्दर के साथ है, इतना जरूर है कि दीन की वजह से अल्लाह ताला अगर हालात साजगार नहीं हुए लेकिन इसको दिल का सुकून जरूर देगा, उसको तमानियत दे देगा ईमान की वजह से। लेकिन अगर हमने दुनिया के वादों पर लोगों को उठाया है कि बरकत हो जाएगी, तुम्हारे घर बड़ा बन जाएगा, बच्चे तुम्हारे ये हो जाएंगे, और तो ये कच्ची कच्ची खेप है, वो जमेंगे नहीं, हाल आए तो उखड़ जाए, हाल आए तो उखड़ जाए, हालात भी नहीं जम पाए। इसीलिए मौलाना साहब रहमतुल्लाह यूसुफ साहब और बुजुर्गों ने जिन लोगों को चलाया अभी नबी, उनको किसी एवज पर किसी उम्मीद पर नहीं चलाया, हर वक्त कोई अल्लाह से कहो, कोई मसला है तो रखा तो अल्लाह से कहो, और आपकी अपना मामला अपने अल्लाह से देख पाओ, और उनके लिए दुआएं अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें सलामत दे, अल्लाह तुम्हें
قبول کرا, تمہارے حالات کو دور کر دیں اور متوجہ کیا سب کا, کیونکہ سب سے مضبوط سبب یہی ہے. اس کے علاوہ جتنے اسباب کچے ہیں اس وقت آپ نے پگھل جا رہے, اور یہ جو دور ہے ان پہ قیامت کے جو فتن کا دور, جس کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے کتاب الفتن میں بہت کسی نے جو حدیثیں لکھی ہیں, یہ ان سے مومن کوئی اس پہ کافر ہے, صبح مومن شام کو کافر ہو جائے. کیا وجہ ہوگی؟ کہ اس کی امیدیں جو اس نے امیدیں باندھی تھی پوری نہیں ہو رہی. شام کا مومن صبح کافر ہے, صبح کا مومن شام کو کافر ہو. ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز, اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اور اپنی آخرت بننے کا یقین. یہ دین اور دین کی محنت کے ذریعے سے اللہ میری آخرت بنا, اپنے مہمان خانے میں جنت میں جگہ دے دے. ایک آدمی اپنے گھر اپنے وطن میں گھر بنانے کے لیے 15 سال 20 سال کسی ملک میں مزدوری کر لیتا ہے, کسی ملک میں مزدوری کرتا ہے کہ میرا گھر بن جائے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا, جھاڑو لگانے کا کام کر لیتا ہے کہ میرے وطن میں میرا گھر بن جائے. ایسے مسلمان کے جذباؤں کے جنت میں میرا گھر بن جائے, اس کے لیے جھاڑو لگانا پڑے تو دنیا میں جھاڑو لگانا, یہ جنت میں میرا گھر بن جائے. یہ امیدیں اجاگر ہوں, اور یہ اس وقت ہو گئے جب اس کے مطابق جو چیزیں باپوں میں ہی نہیں ہیں, جو چیزیں مذاکروں میں ہی نہیں ہیں, ہم خود سوچیں کہ جنت ہمارے مذاکروں میں کتنی ہے. جنت ترغیب ہی چیز ہے, اللہ نے ترغیب کا علم اتارا ہے, ترغیب کا علم, تبشیر کا علم اتارا ہے. اس کو بولا جائے جمعہ کے دن بھی اور گشتوں میں بھی اور ملاقاتوں میں بھی انفرادی باتوں میں بھی آپس میں, کہ اگر آدمی کا ذوق یہی ہے تو اچھی اچھی چیزوں کو سننا چاہتا ہے, اور اس کا ذوق ایسا ہے کہ دنیا بھر کے پکنک سینٹروں کی باتیں کرتا ہے, تو ہم اس کو جنت بتائیں گے. مالک بن دینار نے حیثیت بتا دی تھی اس باندھے کو. مالک بن دینار نے بہت زیادہ مٹر کے چل رہی تھی اور بہت اکڑ کے چل رہی تھی اور حقارت سے دیکھ رہی تھی مالک بن دینار کو, تو اس کو اپنی حیثیت بتا دی کہ تیری حیثیت کیا ہے. یہ جنت اللہ نے بنائی ہے, جس کی عورت کا یہ حال ہے اور تیرا یہ حال ہے, عیب ہو گئی, عیب ہو گئی. ہم کیوں تعصب لیں؟ ہمارے پاس تو اس سے اوپر کی چیز ہے. دنیا کا کوئی بھی کارڈ ڈالے گا, دنیا کا کوئی بھی آدمی آ گیا, تو ہمارے پاس اس سے اوپر کا کارڈ ہے, اس سے اوپر کی چیز ہمارے پاس. کہ دنیا میں کوئی کسی کی مدد کی بات کرتا ہے, ہمارے پاس اللہ کی مدد کی بات ہے. دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت کی بات کرتا ہے, ہمارے پاس جنت کی بات ہے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے خوف کی بات کرتا ہے, ہمارے پاس جہنم کے خوف کی بات ہے. اور یہی اللہ نے ہمیں دیا, اس لیے ضرورت اس بات کی اپنی مسجدوں کو, اپنے علاقوں کو, اپنے حلقوں میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے پیچھے پیچھے رہ کر کے مسئلہ دماغ کرنا ان کے ساتھ ہو نہیں. علماء کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی وہ نمایاں کردار ادا لے کر چلے اپنے لوگوں, یہ صلاحیت اہل علم کو دیا تھا. اور فطری طور پر لوگوں کے دل میں احترام کے علماء کا زیادہ ہوگا, اور خصوصاً امام ہے پھر مسجد کے بہت زیادہ ہوتا ہے. مسجد کا امام حافظ حافظ قرآن, تو لوگ مسئلہ اس کو پوچھتے ہیں, حالانکہ اس مسجد کے مسلح کو پوچھتی نہیں, لیکن چاہتے امام صاحب کے پاس, امام صاحب کے مفتی صاحب سے پوچھ کر بتا دیتے ہیں. وہ ایک فطری چیز ہے, لوگوں کے دلوں میں احترام ہوتا ہے. اپنے مدنی میں شادی میں اس میں اس میں حافظ صاحب کو امام صاحب حافظ صاحب اسکول کو بولے اللہ کی طرف سے, اس لیے وہ دوسرا جو مکتب میں گزر رسی ہے اپنے اس مکتب کی ذمہ داری کے ساتھ 50-60-100-200 بچے مکتب میں ہیں, ان بچوں کے راستے سے ان کے والدین تک پہنچنے کی بہت آسان سبھی ہوتی ہے, ان سب پہنچ سکتے آسانی کے ساتھ, ان سے موقع بنانا, اچھا تعلق پیدا کرنا, اور پھر وہ تعلق کو دین کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے, ہماری کوئی غلط نہیں, کسی والی سے چائے کی ضرورت نہیں, ہم چائے پلائیں گے کسی والی سے, چائے بڑا سے بڑا آدمی ہو. ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے کو قریب لوگوں کو, ہم یہ بھی نہیں کریں گے اتنا پرابلم ہوگا ایسا, یہ بھی جملہ صحیح نہیں, یہ بھی جملہ ٹھیک نہیں. ہماری زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیا اس کا احترام کیا, تیار حکم کی جاہلیت, تیار حکم کی اسلام, کہ جو جاہلیت میں بڑے تھے ان کا اسلام لانے سے پہلے بھی حضور نے عزت کی ہوئی, اور یہ کہا کہ اسلام اگر یہ لوگ لائیں گے تو ہم ان کا احترام اور احترام باقی رکھیں گے. وہ اپنی جگہ, وہ ہمارا دینی فریضہ ہے, کسی جگہ کے سردار آئے وہ اپنی چادر پیچھا کر مسلمان نہیں, ان کا احترام. لیکن اپنی کوئی دنیا میں غرض نہیں, غریب کا باپ ہوگا غریب پہ
बेटे का बाप होगा या मालदार बेटे का बाप होगा, हम इस किस्मत से कि भाई इनसे हमारा रक्त बनेगा, तो हम अपने उस रक्त को इस्तेमाल करके इनकी जो दीनी कमजोरी है उसको दूर करने के लिए, और आसान रास्ता यह है कि उनको दावत के काम लगा दें। उसके लिए हर महीने अगर तीन दिन दे लगा सकते, मकतब की ऐसी मजबूरी है हर महीने नहीं कर सकते, तो हर दो महीने में मकतब अगर, साल में चार मौके तकरीबन ऐसे होते हैं जिसमें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती, तीन दिन पूरे होते हैं इलाह की मस्जिद की इमामत है उसमें बदल करना पड़ेगा। जैसे अभी बकरी आएगी बकरी तो सब जगह तीन चार पाँच दिन की छुट्टी होगी, रमजान ईद में यही मौका होगा, ऐसे बात जगह इम्तहान के बाद एक दिन छुट्टी पड़ जाती है, वैकेशन आते हैं तो वैकेशन में होता है, तो साल में चार पाँच मौके तो ऐसे आते हैं जिसमें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, छुट्टी मौजूद है, इतना एक छुट्टी को किसी और तकाजे पर एक्सचेंज किया है और उसकी कुर्बानी देनी होगी, और वो तीन दिन हम अपनी मस्जिद की जमात अपने साथ तैयार करके तीन दिन, और पूरे तीन दिन में अपने बुजुर्गों ने पहले मसला करीब 10-12 साल पहले आएगा, अगर नसीब के लेकर उनको छुट्टी हमें नहीं मिलती दफ्तरी लगा रहे, तो फिर उस वक्त काफ़ी देर गुजारना हुआ, फिर क्या हुआ कि भाई दफ्तरी जा रहे तो उसमें यकसुई नहीं रहती, जो जमात उनके साथ होगी चूँकि तालीम के और उधर इस मदरसे में दोनों सुबह भी दोपहर में भी, और फिर बात अगर बहुत दूर है तो शाम को पहुँचते पहुँचते देर हो गए थक गए, या पढ़ा कर आए तो बात वक्त रहना जरूर नहीं है, और तीसरे दिन फिर सुबह आने की फिक्र, तो इसमें फिर ये देर हुआ आपस में हर महीने ना लगा, हर दो महीने में पता लगा, लेकिन छुट्टी लेकर लगा, लेकिन जब हिसाब करते हैं तो साल में चार मरतबा तो ऐसा मौका है कि जिसमें छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं, बकरीद में रमजान ईद में इम्तहान के बाद ये दिवाली में छुट्टियाँ हो जाती है, बाजा जगह अप्रैल में भी छुट्टियाँ रहती हैं, तो ऐसे चार मरतबा में अगर लग जाते हैं पूरे तीन दिन तो वही मत अपने साथ नौजवानों को तैयार किया, 12-15 को मस्जिद के मुतवल्ली हैं, शहर के काम के जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, उलमा के साथ जल्दी तैयार हो जाते, उनको अपने रफ में लाए तैयार किया, एक जोड़ते मुसलसल एक तामीरी में रहिए, अपने गंगाली तौर पर हमें कंडला चिल्ले में लेके चले आगे वो बन जाएंगे ऐसा थोड़ा होगा, एक तामीर है कि हमने उनसे रब कायम किया, ताल्लुक बनाया, दुआ सलाम की, चाय पिलाई, खरीद लिया, फिर उनको धीरे से मैं तीन दिन जा रहा हूँ, कोई एक पटवा तीन दिन आया, फिर दो महीने का फिर दोबारा आया, फिर तीन महीने का फिर जगह आया, फिर अब चिल्ले का मौका आया, तीन मरतबा के तीन दिन में इतना उनका जहन बताया कि हमारा सालाना चिल्ले का वक्त आ रहा है, उस वक्त तक तो उनको चिल्ले के लिए आना जा करके अपने साथ चिल्ले के लिए, अब वही आदमी उसने चिल्ला हमारे साथ लगाया, अब अच्छा खासा उतने का कदर हो जाएगा, उसमें जान माल लगाने की बड़ी सलाह, अब हम उसको जानवर लगाने की जगह बताए, हमारे यशर रहमतुल्लाह फरमाते थे हम उम्मत को जानवर लगाने की जगह बताए, किसी की जानवर पकड़ेंगे नहीं, किसी की जानवर हाथ में देंगे, उसको जगह बताए फला जगह लगा, तू फला जगह लगा, तो इस तरह फिर ये उम्मत के जो तरफा की जरूरत जा रहा है, और दूसरा जो हमारा नौजवान है नौजवान अगर उससे हमारा वक्त लड़ा तो गैर शुरूरी तौर पर इस वक्त जो हालात हैं और खुसूसन ये जो मीडिया सोशल मीडिया उसके रास्ते से जो फिक्रें चल रही और ऐसे ऐसे मुतकल्लिम और ऐसे ऐसे मुकर्रर आ रहे हैं कि वो उनको सुनते हैं, अभी हम लोग एक खुसूसी मुलाकात में तो बढ़ रहा अच्छा बड़ा आदमी है सिकंदर किस्म का आदमी दुनिया विदाई से, उसके बाद बैठे थे मुलाकात में रहा तो कहने लगा कि जुमा की नमाज अभी हमारे ऊपर फर्ज है, तो कहने लगा वो तो इस्लामी रियासत में खलीफतुल मुस्लिमीन का हाथ में वही पढ़ाता है जुमा की नमाज, तो मैंने कहा तुमने बुजुर्ग को किसने कहा है, तो उसने कहा कि फला साहब को मैं वो सुनता हूँ इंटरनेट पर, उन्होंने कहा कि तो इस्लामी रियासत को कभी खाई नहीं, मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला जुमा जो पढ़ा और आपसे पहले असल इब्न सुलावा ने जुमा खाई किया मदीना में, उस वक्त हुजूर की इस्लामी रियासत था, आपका सब सफर हिजरत जब जा रहे थे कुबा में ठहरे, फिर आगे जाए जुमा का दिन रास्ते में पड़ा तो जहाँ मस्जिद है जुमा अभी हाँ उर्दू में नमाज जुमा अदा की, उस वक्त तो अभी इस्लामी रियासत भी नहीं बनी थी, क्योंकि उर्दू में कैसे पढ़ जुमा, और उसके बाद पूरी तारीख में जुमा और बड़ा आदमी भलाई के साथ उन्होंने पेश किया ऐसे, फिर मैंने उनको समझाया कि चलो आप जो कह रहे हो उसमें तस्लीम तल्ला जुमा छोड़ दो, तो फिर बोले बहुत सारे लोग हैं जो जुमा जुमा पढ़ लो भी नहीं पढ़ेंगे, वो खुद कह रहे हैं बहुत से लोग हैं जैसे जुमा की नमाज पढ़ते, अब वो एक मुतकल्लिम को सुन रहा है, वो बोले मैं भी सुनता हूँ, मेरे भतीजे भांजे और मेरे अब्बा सब सुनते हैं, अब वो गैर शुरूरी तौर पर हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और गैर शुरूरी तौर पर वो हमसे दूर होता जा रहा है, उनको पता भी नहीं, जब ये मुलाकातें होगी घर घर जवान से पर तो ऐसी बातें लाएंगे पूछेंगे तो सुनना तो अब उनको कहते हैं उसको सुनो के मत फिर मैंने उसको बताया कि क्या सुन ये हमारी औलाद हमारी नहीं होगी मुस्तकबिल। मौलाना उमर साहब का एक जुमला जो बड़ा बहुत जबरदस्त जुमला है कि अपने घरों में तालीम शुरू कर दो वरना तुम अपने घर में बेघर हो जाओ। मौलाना उमर साहब ये फरमाते हैं अगर दीनी तालीम का निजाम हमारे घरों में नहीं तो फिर हम अपने घर में महफूज नहीं है। चाहे आदमी खुद अहले इल्म में से लेकिन अपनी नस्ल में दीन नहीं बचा सके, अपने पोतों में दीन नहीं बचा सके। और अभी देख रहे हैं कि दादा जो थे अच्छे आलिम थे लेकिन पोतों को हवा भी नहीं। हम लोग एक इलाके में गए थे एक इदारा था बहुत बुरा मर गया था अभी तो विराम हो गया लेकिन उसका नाम था। जब वो वहाँ गए तो मैंने सोचा कि उनके खानदान के लोगों से मिले फिरंगी में लखनऊ तो वहाँ गए तो कोई कुछ था ही नहीं। फिर एक आदमी निकला वहाँ से बाइक शर्ट जींस में था तो किसी ने कहा कि ये उस खानदान का लड़का है। हालांकि वहाँ चूल्हे के इदारे देखो आसान रास्ता ये है कि मस्जिद की जमात के रास्ते से घर घर की मुलाकातों में वो सब आते हैं और जमात अपनी बनाते हुए हम टारगेट अभी किसी से असर के बाद कारगुजारी हुई जो पहुंचे थे पूछा आपकी तीन दिन की जमातों में नए कितने जा रहे हैं नए तो फ्रेश तो कह रहे दो तीन आदमी हालांकि नए बुजुर्ग वाले क्या काम के एक पुराना 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बना रहे और सारे नयों को अपने साथ लेकर ये असर करती है। दो पुराने में तीन बहुत हो गए एक जमात बाकी 8-9 नया तो नया माल आता रहेगा। और अगर ये नहीं तो वही हमारे 50-60 वक्त लगे हुए हैं महीने में लोग जाती है जमातें तो एक महीने में लोग आए दूसरे महीने वो नहीं जाएंगे दूसरे चले गए तो जमात का रूटीन रहेगा कि दो जमातें जा रही लेकिन नया माल नहीं आएगा। हालांकि तीन दिन वो शक्ल है कि तबलीग में दाखिल होने का दरवाजा है और दरवाजे से नए लोग दाखिल लेते हैं। जरूरत है कि नए नए लड़कों को नौजवानों को या उस नोयत के लोग जो आज तक नहीं गए बड़ी बड़े उनकी हो गई है उनको अपने साथ तैयार करें तीन तीन दिन अपने साथ ले जाओ। फिर अपना जो सालाना खुरूज का अपना वक्त है उस मौके पर उसको तैयार करके हमेशा चिल्ला लग रहा है दो चिल्ले हमारे लगे अब हम खुद कोशिश करें कि हमारी मसरूफियतों के साथ जिनका साथ लगाना दो दो मतलब 4 महीने लगे बैरून की अपनी तरतीब बना और बैरून की अपनी जमात बना ये नहीं कि आखिर में 7 आदमी तैयार करके इलाके वाले हमारे पास मौलाना साथ तैयार हो चुके हैं अभी दाखिल जरूरत है अब अल्लाह के तो एक तो वो शक्ल और उसमें हमारा वक्त है और एक हम आगे से तैयार हैं 2019 में कह रहे हैं 2020 के मेरा वक्त लगता है 2020 की जून में बैरून के लिए तैयार और अभी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद में ऐसे कितने हैं दो मरतबा उनको तैयार मस्जिद में हल्के पर नजर दबा कि भैया हमारे साथ उनकी तशकीलें करके तैयार किया कवायद के साथ जिम्मेदारों के सामने पेश कर वही साथी हैं वो देख और जमात अपने घर तो इस वजह से फिर दुनिया के मुल्कों में जाकर काम करने का जो हमारी तरतीबें हैं जिसको रोजाना बढ़ना बयान करके सुनते हैं इसलिए आप अल्लाह से गुजारिश की कि इसकी सभी नियत करें कि इंशाल्लाह जो मकामी मेहनत का हमारा खाका है वो भी और बैरूनी नकलो हरकत के अतबार से बुजुर्गों ने उलमा की मदद से मकतब की रियायत के साथ जो तरतीब कायम की है कई साल इंशाल्लाह और 2 साल छोड़ के हर तीसरे साल बैरून सफर हो तो इसकी नियत करें कि इंशाल्लाह इस तरतीब पर हम अपने आप को लाएंगे इंशाल्लाह वही नियत करते हैं सभी इंशाल्लाह हम सबके लिए आसान होगा। अगर हमारी इस नियत सच्ची है अल्लाह से हमारा मामला सच्चा है तो अल्लाह ताला वो करते हैं। आप देखो आपके ज़िले में बहुत सारे उलमा हैं जो इन सारी तरतीबों में से रोज़ा भी ढाई घंटा भी और बैरून तक के सफ़र अपने मकतब के साथ अपनी इमामत के साथ सूबे में ऐसे बहुत सारे हमारे अल्लाह का फ़ज़ल है पूरे सूबे पर अल्लाह का करम है जो उलमा की बड़ी तादाद है जो माशाल्लाह मुकामी मेहनत के साथ बैरून के मरकज में बैरून लोगों के सफर करते हैं। कोई जमात मुश्किल से पाली होती है जिसमें कोई अलविदा नहीं اور وہ حضرات جو علماء زیادہ ہیں بناسکاٹا میں جانا سفر کر رہا ان کے تو ہر جماعت کا چار پانچ علماء ہوتے ہیں اور اکثر تفقد جاتے ہیں تفقد زیادہ تر مدرس ہوتے ہیں زیادہ تر مدرس وہ اندر سے ایک نیت بناتے ہیں اور اللہ صاحب کر دیتے ہیں اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے طے کریں جن کے سال سال لگے ہیں چار چار مہینے لگے ہیں دو دو مرتبہ چار چار مہینے ہو گئے وہ تو طے کریں کہ ان شاء اللہ اس سال اپنی بیرون کی ترتیب بنائیں گے ان شاء اللہ ذرا پیش کرو پڑھ